श्री भगवान तक पहुंचने का मार्ग सरलता पूर्वक प्राप्त होता है। क्लेश में भौतिक परिस्थितियों में संलग्न रहने हत भाग्य होने के कारण भौतिकवादी व्यक्ति मुनि जनों की संगति नहीं महान संत जड़ भरत ने क्लेशमय दशा तथा उससे बचने के साधन इन दोनों का वर्णन किया है। इसे बचने का एकमात्र उपाय है भक्तों की संगति और यह संगति अत्यंत सुगम है। यद्यपि भाग्यहीन व्यक्ति को भी यह सुअवसर प्राप्त होता है किंतु दुर्भाग्यवश वे शुद्ध भक्तों की शरण में नहीं जा पाते तथा वे निरंतर कष्ट भोगते रहते हैं। फिर भी यह कृष्ण भावनावृत आंदोलन इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक प्राणी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके इस पद का अनुसरण करे। कृष्ण भावनावृत के उपदेशक वार-वार जाकर लोगों को यह बताते हैं कि भौतिक जीवन के कष्टों से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति रत्न बीज। भगवान श्री कृष्ण यदि मनुष्य थोड़ा बुद्धिमान है तो वह कृष्ण भावनावृत का अनुसरण कर सकता है और इस प्रकार भौतिक जीवन के अनुवाद समस्त जीवात्माओं के मित्र मुनि जन की चेतना शांत होती है। वे अपने इंद्रिय और मन को वश में कर चुके होते हैं और उन्हें मुक्ति पर जो श्री भगवान तक पहुंचने का मार्ग है सरलता पूर्वक प्राप्त होता है। क्लेश में भौतिक परिस्थितियों में संलग्न रहने तथा हत भाग्य होने के कारण भौतिकतावादी व्यक्ति मुनि जनों की संगति नहीं कर पाता।
ओम ज्ञान तिव्रदास्य ज्ञानंजना शर्मा सर्वेदनीय श्रीचेतान्या मनोविष्टा साविदामेन भूतले स्वयंरूपापदामने तदाति स्वामप्रतिगम वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां स्वागतम् हे कृष्ण करुणा सिंधु जगपते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निधानंद हे कृष्ण हरे सुनाई दे रहा है। मैं घर कल शाम को बैठ गया था, सारा दिन बात कर रहा था, तो अगर ट्रांसलेशन की आवश्यकता हो जो कि मुझे हम उसका उपयोग करेंगे। तो जैसे हमने कल कहा था, जिस भारत हमारे लोग आगे कथा प्रति हो इस और जन भारत कौन थे आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। समाज में उनका व्यवहार था जैसे वो गूंगे में पहले, क्यों? क्योंकि जब वो भारत महाराज के रूप में प्रकट हुए थे तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, पत्नी बच्चों सब राज्य वो गए जंगल में, वहाँ चिंतन करने के लिए उन्होंने देखा एक शेर हिरणी का पीछा कर रही और शेर हिरणी घबरा रही उसे घर में बच्चा था और उसे छलांग मारी जिसके द्वारा बच्चा जीवित रहा माँ मर गई। तो जैन बहादुर ने सोचा मुझे इस पशु का देखभाल करनी है और बड़े ध्यान से देखभाल कर रहे थे इतना तक कि इतना बहुत आकर्षण हो गया था खेलने के प्रति कि नहीं एक दिन जैसे दूर हो गए थे राजा उनको थे ढूंढ रहे थे और ढूंढे ढूंढे या हुए उनके में से तो भगवान कहते हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति है थोड़ी भी भक्ति आप करोगे तो लाभ जिन महाराज ने कोई तपस्या भी की नहीं इसके कारण उसने जन्म प्राप्त हुआ एक ब्राह्मण था वो समझ गए थे कि पूर्व जन्म में उन्होंने एक पशु के प्रति आकर्षण रखा जिसके कारण उनको उस पशु के रूप में जन्म में ज़्यादा देर नहीं रहना पड़ा क्योंकि क्योंकि सेवा भी की थी बाल महाराज ने सेवा भी की थी। तो जन भारत ने किसने उपदेश दिया किसे फिर इस दिव्य लीला की चर्चा करने के पश्चात इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं हर श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है पढ़ रहे हैं क्या कि किस प्रकार वज्जीर जुड़ जाता है उन कार्यों में वो इस प्रकार उसकी मुक्ति हो सकती है। जब भारत उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये बताया कि कैसे व्यक्ति माया में जा फंसता है और सारे उपाय भी लिया कैसे आप इसे मुक्त हो सकते हैं। वैदिक शास्त्र में जो समस्या है उसका वर्णन है उसका उपाय क्या है वो भी दिया जाता है। जो शिक्षा जलवायु ने दी वो है उपाय उपाय उन क्लेशों से मुक्त होने के लिए। तो जब भारत ने ऐसा व्यवहार किया था कि गूगल था बैठा था गूगल बैठा था नहीं क्योंकि जब जब महाराज ने रोज भाषा में बोला तो जो जब जल महाराज ने उत्तर दिया तो वो समझ गया क्या ये महासन ने तो जैसे जल महाराज जूंगे थे ये था उनका व्यवहार पर वो बोलते घूंगे में बैठे नहीं थे कि जब वो प्रचार का समय आया बड़े बड़े जोर से बोल। तो इस अध्याय में ये शिक्षा मिलती है कि कैसे हम भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है
इस श्लोक में कहा क्या कहा गया है
पिछले श्लोकों में कहा गया है साधु संघ में लाभ उठाना चाहिए।
पिछले श्लोकों में कहा गया है कि हमें साधु संघ का लाभ उठाना चाहिए।
और इस श्लोक में क्या कहा जा रहा
है कहा जा रहा है
जो अध्यात्म वाले व्यक्ति हैं वो सब जीवात्मा के मित्र हैं।
जो अध्यात्म वाले व्यक्ति हैं जो वो सब जीवात्माओं के मित्र हैं
वो इस कारण उनकी चेतना शांत रहती है
इस कारण उन सबकी चेतना शांत रहती है।
तो साधु जो है सबका मित्र है
साधु है सबका मित्र है।
तीसरे स्कंद में देवहूति और कपिल देव का विषय में आप पढ़ते हो।
तीसरे स्कंद में देवहूति और कपिल देव
तीसरे स्कंद में आप देवहूति और कपिल देव का संवाद पढ़ते हैं।
तो देवहूति ने हमने भेड़े से पूछा, ये बताओ कि किस प्रकार मैं जन्म मिले के बंधन से मुक्त हो सकती हूँ।
देवहूति अपने पुत्र से पूछते हैं कि मुझे बताइए कि किस प्रकार मैं जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकती हूँ।
माता को पता था कि मेरा बेटा कौन है, भगवान का अवतार है।
उनकी माता को पता था कि मेरा बेटा कौन है, भगवान का अवतार।
तो भगवान को पीला नहीं था। आपका जो प्रश्न है बहुत लाभदायी है पूरे मानव समाज के लिए।
कपिल देव कहते हैं कि आपका जो प्रश्न है बहुत लाभदायक है पूरे संसार के लिए, मानव समाज के लिए।
साधु संघ का लाभ उठाओ।
उन्होंने कहा साधु संघ का लाभ उठाइए।
माता ने पूछा साधु की क्या पहचान।
माता ने पूछा साधु की क्या पहचान है।
ऐसे तो हर व्यक्ति समझ में साधु है।
ऐसे तो हर व्यक्ति लगता है कि गहलोत साधु है।
तो फिर उत्तर में वहाँ पर कपिल देव ने यह प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण किया।
तो उत्तर में भगवान कपिल देव ने यह प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण किया है।
तो भगवान के प्यारे ने कहा जो साधु है वो सबका मित्र है।
भगवान कपिल देव ने कहा जो साधु है वो सबका मित्र है।
ये नहीं कि ये सोचता है ये मेरा दल है या उसका दल है।
ये नहीं कि ये सोचता है कि ये मेरा दल है या उसका दल है।
वो सबका मित्र है।
वो सबका मित्र है।
जो उसकी आलोचना करे उसका भी मित्र है।
जो उसकी आलोचना करते हैं उसका भी मित्र है।
तो राम राज के पिता चाहते थे कि बेटे को राजनीतिक शिक्षा दी जाए।
राम महाराज के पिता चाहते थे कि उनके बेटे को राजनीतिक शिक्षा।
तो उनके उन्होंने उनके अध्यापकों संध्या मार का ये दो अध्यापक थे इसको राजनीतिक शिक्षा दो।
हाँ, तो महाराज के पिता ने उनके अध्यापक कहा कि इनको राजनीतिक शिक्षा दीजिए।
ये बताइए कैसे हम शत्रु बनाए पुत्र बंधु बनाए।
ये बताइए कि कैसे हम शत्रु बनाए और मित्र बनाए।
ने कहा मुझे इस शिक्षा में कोई रुचि नहीं कि मेरे लिए सभी मेरे शत्रु हैं, मुझे सभी मेरे मित्र हैं।
मुझे इस शिक्षा में कोई रुचि नहीं है क्योंकि मेरे लिए सभी मेरे मित्र हैं।
तो प्रभुपाद भी कह रहे थे हमें एक ही हमें ये विचार करना चाहिए एक ही भाव है कि सबके हम मित्र हैं।
प्रभुपाद बताते थे कि हमें यही एक ही भाव रखना चाहिए कि सभी हमारे मित्र हैं।
तो यहाँ कहा जा रहा है जो लहन बीमारी है वो सन है वो सब की बातों के मित्र हैं।
यहाँ बताया जा रहा है कि जो साधु हैं सभी के मित्र हैं।
तो सब भक्त है वो चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता।
चींटी को भी जो भक्त है वो चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता।
जैसे जय जब चल रहे थे हमारे भगवान की पगड़ी को उठा रहे हुए उन्होंने अपना पैर कभी में नहीं रखा। वो देखते थे कि 3 फुट आगे तक कोई चीटी तो नहीं है।
जैसे रघुनाथ के पालकी उठा रहे थे और पूरा ध्यान रख रहे थे कि किसी भी चीटी पे उनका पैर ना पड़े।
उसी प्रकार हम सबका भाव होना चाहिए कि हम उनके मित्र हैं।
इसी प्रकार हम सबका यही भाव होना चाहिए कि हम सबके मित्र हैं बने।
एक समय एक व्यक्ति ने पापा की बेइज्जती की थी एक स्कूल प्रोग्राम में। हम गए थे उनके साथ कैनेडा में।
एक समय प्रभुपाद की किसी ने बेइज्जती की थी कैनेडा में एक प्रोग्राम में। प्रभुपाद ने बिल्कुल बुरा नहीं माना,
आशीर्वाद दिए,
उनको आशीर्वाद दिया।
जो भक्त है वो किसी को शत्रु नहीं मानता।
भक्त है किसी को शत्रु नहीं मानता।
आप लोग है मैं आलोचना करता है
आप कहोगे कि वो भक्त मेरी आलोचना करता है
कैसे तो मित्र के
रूप में मैं उसको कैसे मित्र के रूप में देखूं।
ये सोचना चाहिए कि अगर कोई कष्ट दे रहा है तो जरूर कोई कर्म होगा।
हर भक्त को ये सोचना चाहिए अगर हमें कोई कष्ट दे रहा है तो वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हो।
और क्या कहा गया है?
और क्या कहा गया है?
जो संत है रहने वाले हैं जो पीसफुल कॉन्शियस है उनकी चेतना ग्रह शांत रहती है।
और बताया गया है कि संतों की चेतना बहुत शांत रहती है।
अगर आपको मन की शांति चाहिए तो एक ही उपाय है, यहाँ विचारों का स्मरण करो।
अगर आपको मन की शांति चाहिए तो एक ही उपाय है कि आप आध्यात्मिक विचारों का स्मरण करो।
तो जाने वाले व्यक्ति हैं वो संत हैं, वो क्या भाव रहता है? हम सबको सुखी देखना चाहते हैं।
जो आध्यात्मिक वाले व्यक्ति हैं उनका एक ही भाव रहता है कि हम सबको सुखी देखना चाहते हैं।
प्रार्थना ने क्या कहा? हे भगवान, मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है।
प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे, वो बता रहे हैं कि हे भगवान, मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है।
मुझे उनकी चिंता है जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बनाना चाहते हैं।
मुझे उन लोगों की चिंता है जो दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलना चाहते हैं।
तो हमें सबके प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए।
इसलिए हमको सबके प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए।
तो यहाँ शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो शांत रहते हैं, उनकी चेतना बिल्कुल शांत रहती है।
इसलिए इसमें बताया गया है कि वो साधु लोग शांत रहते हैं, उनकी चेतना भी शांत रहती है।
कई बार हम भक्त मिलते हैं कहते हैं मन शांत है, हम
कई बार भक्त लोग मिलते हैं और वो पूछते हैं कि मन बहुत अशांत है, मन बहुत सताता है।
अगर हमारे मन में ये भाव हो कि हम भगवान की शरण में होना चाहते हैं और भौतिक विचारों का स्मरण नहीं करो, फिर आप मन में शांत हो जाएगा।
तो हम अगर भौतिक विचारों का स्मरण ना करें तो भी हमारा मन शांत हो जाएगा।
इस समय मन अशांत क्यों है?
इस समय हमारा मन अशांत क्यों है?
हमें आध्यात्मिक जीवन चाहिए और भौतिक जीवन चाहिए,
क्योंकि हमको आध्यात्मिक जीवन चाहिए और भौतिक जीवन भी चाहिए।
भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और आध्यात्मिक इच्छाओं को,
भौतिक इच्छाओं को भी पूरा करना चाहते हैं और आध्यात्मिक इच्छाओं को भी पूरा करना चाहते हैं।
इस कारण हमारा मन अशांत है।
इसी कारण से हमारा मन अशांत है।
आप ईर्ष्या करते हो जब आप देखते हो कोई भक्त उन्नति कर रहा है।
आप ईर्ष्या करते हैं जब आप देखते हैं कि कोई भक्त आपसे ज्यादा उन्नति कर रहा है भक्ति में,
तो हम आलोचना करते हैं।
फिर हम आलोचना करते हैं भक्त की।
तो अगर आप सोचते हो कि ये भक्त में आपकी अच्छी योग्यता है तो हमें खुश होना चाहिए।
आपको किसी भक्त की योग्यता को देख के उस खुश होना चाहिए, अच्छी चीज देख के।
तो यहाँ सूर्य गोस्वामी आगे कह रहे ये जो संत हैं उन्होंने इंद्रियों को उसमें किया है और अपने मन को भी।
यहाँ पे सूर्य गोस्वामी बता रहे हैं कि जो संत है उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को वश में किया है।
भगवान के अनेक नामों में एक नाम है ऋषिकेश।
भगवान ऋषिकेश है।
भगवान के अनेक नामों में एक नाम है ऋषिकेश।
भगवान के नामों में एक नाम है ऋषिकेश।
ऋषिकेश का क्या अर्थ है?
ऋषिकेश का क्या अर्थ है?
इंद्रियों के स्वामी।
जो इंद्रियों के स्वामी है,
फिर जो इंद्रियां हैं अगर हम उन्हें वश में नहीं रहे हैं वो हमारे बंधन का कारण बन जाते हैं।
जो इंद्रियां हैं अगर हम उनको अपने वश में नहीं लाते हैं तो वो हमारे पतन का कारण बन जाते हैं।
भागवतम में उदाहरण दिया जाता है।
भागवतम में उदाहरण दिया जाता है
मछली है
जो मछली
कैसे बहुत फंसती है,
जो मछली है वो कैसे फंसती है कांटे में।
वो मछली करने जाता है वो कांटे के नीचे के साथ कुछ भोजन,
जैसे जो मछली पकड़ने जाता है वो कांटे में कुछ भोजन लगा के रखता है मछली को पकड़ने के लिए।
जैसे मछली देखती है कहती है ओह मुझे कोई खाने को मिल रहा है।
जैसी मछली देखती है कि मुझे खाने को मिल रहा है
और जब वो खाने जाती है फंस जाती है।
और जब वो खाने जाती है तो फंस जाती है।
तो मछली फंस दिए गए थे जीव को दूर करने के प्रयास में।
तो मछली कैसे फंसती है? अपने जीव को खुश करने के प्रयास में वो कांटे में फंस जाती है।
फिर हाथी, हाथी को पकड़ना आसान नहीं है।
जैसे दूसरा एग्जांपल हाथी, हाथी को पकड़ना मुश्किल है, आसान नहीं है।
तो शिकारी क्या करते हैं?
शिकारी क्या करते हैं?
एक बड़ा खड्डा बनाते हैं,
एक बड़ा सा खड्डा बनाते हैं,
वो घास से ढकते हैं,
उसको घास से ढक देते हैं।
उन्होंने वो सुई एनिमल को ट्रेन किया, वो हाथी सुई एनिमल का पीछा करता है, वो डर वो कह वो डर वो गले में फंस जाता है।
और जैसे शी एलिफेंट को जब ही एलिफेंट पीछा करता है तो उस गड्ढे में गिर के फंस जाता है।
तो हम अपने उदाहरण देखते हैं, इन्हें कहने के किस प्रकार इन शक्ति हम आसान के कारण ये जो आती है वो फंसता है।
इसलिए भागवत में ये सब एग्जाम्पल दिए हैं किस तरीके से जीवात्मा इंद्रियों में फंस कर, इंद्रिय तृप्ति में फंस कर फंस जाता है।
फिर मधुमक्खी, मधुमक्खी जो है वो हमेशा अच्छे फूल में बैठना चाहती है।
जिस प्रकार मधुमक्खी हमेशा अच्छे फूल में बैठना चाहती है
और अंदर मुझे लोटस फ्लावर मिलता है,
उनको
लोटस फ्लावर में बैठती है।
हाँ, लोटस फ्लावर में बैठती है,
लोटस फ्लावर जब बैठती है ना कि सब कुछ भूल जाती है।
उनको लोटस फ्लावर में बैठते हुए इतना आनंद आता है कि वो सब कुछ भूल जाती है।
शाम को जब कमल का फूल बंद होता है वो फंस जाती है।
और जब शाम को कमल का फूल बंद होता है तो वो फंस जाती है,
मृत हो जाती है
और उसमें फंस जाती है।
पतंगा जो है वो ब्राइट लाइट पसंद आता है,
जो पतंगा है वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है।
और जब रात का लाइट जलाते हैं जाकर के कह रहे हैं ओह मैं इंतजार कर रहा था, उसमें जाके बैठने का प्रयास कर रहे।
तो जब वो लाइट रात को लाइट जलाते हैं तो पतंगा कहता है कि मैं इंतजार कर रहा था।
और जब वो बत्ती के पास आ रहा है बत्ती की तेज से उसकी मृत्यु हो जाती है।
और जब वो लाइट के पास जाता है तो उसकी तेज रोशनी से तेज से वो मृत्यु हो जाती है।
आपने देखा होगा मायापुर में सुबह जब वो जाते हैं देवी हुए,
आप मायापुर में देखते हैं जब सुबह जाते हैं दर्शन के लिए कितने लोग लाइट के पास वो पतंगे मरे हुए मिलते हैं।
तो भगवान भी उदाहरण देता है ये स्थापित करने के लिए कि अगर हम भी माया इंद्रिय तृप्ति के पीछे प्रयास करेंगे तो हमारा भी यही परिणाम होगा।
भागवत हमें यही शिक्षा देता है कि अगर हम भी इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे रहेंगे तो हमारा भी यही परिणाम होगा।
मनुष्य का ध्यान दो अभी आंखों को अभी जीभ उठे
मछली, जिस तरह मछली का देहांत हुआ वो अपनी आप अपनी इंद्रियों को जीभ को टेस्ट करने के लिए,
हाथी का देहांत
हुआ काम वासना के कारण।
और जो हिरण है हिरण को पकड़ना बहुत मुश्किल है,
हिरण को पकड़ना बहुत मुश्किल है।
मैं वॉशिंगटन से संबंध है उसमें एक हिरण उस इलाके में बहुत से हिरण है।
हमारा वॉशिंगटन का जो मंदिर है वहाँ पे उसके इलाके उस इलाके में बहुत सारे हिरण
हैं, मंदिर में होते हैं
हमेशा तीन चार हिरण मंदिर के आसपास होते हैं।
तो हिरण को पकड़ना बड़ा मुश्किल है,
हिरण को पकड़ना बहुत मुश्किल है।
शिकारी है वो एक खास धूल है, जब वो धूल बसती है तो हिरण हमेशा भागते रहता है, रुक जाता है ये देखने के लिए धूल कहाँ से आ रही है।
शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए एक प्रकार की धूल प्रकट करता है और हिरण उस धुन के पीछे पीछे भागता है और शिकारी के जाल में फंस जाता है।
तो भगवद में ये उदाहरण दिए गए, भगवतम का उदाहरण है,
ये भागवतम का उदाहरण है, भागवतम में बहुत सारे उदाहरण दिए गए
हैं। पशुओं में एक ही इंद्रिय है जो संतोष करने का प्रयास करते हैं,
पशुओं में बस एक ही चीज होती है, वो इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं,
पर जो मनुष्य जीव व्यक्ति है अपने सारे इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं।
मनुष्य अपनी सारी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं।
हम नेत्रों से पोर्नोग्राफी देखना चाहते हैं,
हम नेत्रों से पोर्नोग्राफी देखना चाहते हैं,
कानों से फिल्मी धुन सुनना चाहते हैं,
कानों से फिल्मी धुन सुनना चाहते हैं,
और जीभ से भौतिक चर्चा करना चाहते हैं,
और जीभ से भौतिक चर्चा करना चाहते हैं,
तो जो और नाक से भगवान के फूल सूंघना चाहते हैं,
और नाक से भगवान के फूल सूंघना चाहते हैं,
तो हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए,
इसलिए हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए,
हमारी पांचों इंद्रियां खींच रही हैं हमें,
क्योंकि हमारी पांचों इंद्रियां हमें खींच रही हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए।
इसलिए संतों ने क्या उपाय दिया है,
इसलिए संतों ने क्या उपाय दिया है
कि हमें इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा,
हमें इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा के
लिए। कैसे
आप बोलोगे, कैसे
जीव का उपयोग करो भगवान के नामों के उच्चारण करने में, भगवान की कथा करने में,
जीव का प्रयोग कीजिए आप भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए, भगवान की कथा करने के लिए,
ये चर्चा करने के लिए, कैसे हम अलग से अधिक मात्रा में ग्रंथ पाठे,
कैसे अधिक से अधिक मात्रा में हम ग्रंथ का वितरण करें,
ये जीव का सदुपयोग, जीव का सदुपयोग, ये है जीव का सदुपयोग,
ये है जीव का जीव जीव का जीवा का सदुपयोग।
और ये जो पैर है उपयोग कर भगवान के मंदिर चल के जाने के,
जो पैर है उनका उपयोग हम कर सकते हैं भगवान के मंदिर जाने के लिए,
और जो आंखें वो उपयोग करने जाए भगवान के सुंदर विग्रह,
और जो हमारी आंखें हैं उनका उपयोग करना चाहिए भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करने के लिए।
तो इस प्रकार अगर हम इंद्रियों का उपयोग करेंगे भगवान के सेवा में, तो हम अपने आप को आपका जीवन शांत हो जाएगा।
अब इस प्रकार अगर हम अपने इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में करेंगे तो हमारा जीवन अपने आप, हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा।
हम हमारा शांत क्यों है, हम बहुत ही इच्छा चाहते हैं पूरी करने के लिए,
हमारा मन इसलिए अशांत है क्योंकि हम भौतिक इच्छाएं भी करते हैं और आध्यात्मिक इच्छाएं भी करते हैं।
यहाँ कहा जा रहा है जो संत है वो सबके मित्र हैं और इसका उनकी चेतना शांत है।
यहाँ कहा गया है कि संत है वो सभी के मित्र हैं, इसलिए उनकी चेतना हमेशा शांत रहती है,
और उन्होंने अपने मन को इंद्रियों को वश में किया है,
और उन्होंने अपने मन को और इंद्रियों को अपने वश में किया
है। मन का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है आपके धार्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए,
आपके मन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है आपके आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए।
भगवान गीता में क्या कहते हैं, मन बंधु भी है और शत्रु भी है।
भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, मन आपका बंधु भी है और शत्रु भी है।
बंधु का मतलब भगवान की शिक्षा के आधार पर सेवा करना,
बंधु मतलब भगवान की शिक्षाओं के आधार पर सेवा करना,
और शत्रु का मतलब यहाँ शिक्षा का लाभ नहीं उठा रहे,
और शत्रु मतलब आप भगवान की शिक्षाओं का लाभ नहीं उठा रहे।
भगवान कहते हैं मन मन भाव मन भक्तो मन की मन नमस्कार करते हैं पति में, मन में क्या कह रहे हैं इस पच्चीस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मन जो है उसके द्वारा क्या करो, मन मना मैं चिंतन करो।
भगवान इस श्लोक में पच्चीस श्लोक में बता रहे हैं मन के द्वारा मेरा चिंतन कीजिए।
तो ये चिंतन के अनेक साधन है,
चिंतन करने के अनेक साधन
हैं। चेतन महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा जाते हुए थे, उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे रामानंद रॉय से।
चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे रामानंद रॉय से।
चैतन्य महाप्रभु को पहले ही सूचना दे दी थी सर्वभूम भट्टाचार्य ने कि जब आप दक्षिण भारत की यात्रा करोगे तो वहाँ आपको एक बड़ा ऊंचे कोटि का भक्त मिलेगा, जो राजपाल है वो भक्त है रामानंद रॉय।
सर्वभूम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को पहले ही सूचित कर दिया था कि जब आप दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे तो बहुत उच्च कोटि का भक्त आपको मिलेगा रामानंद रॉय।
वो मिले महाप्रभु ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे,
इसलिए महाप्रभु ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे रामानंद रॉय से।
भक्त जो है भगवान की महिमा को बढ़ाना चाहता है, भगवान जो है भक्तों की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं।
भक्त जो है वो हमेशा प्रयास करता है कि वो भगवान की महिमा को बढ़ाए और भगवान हमेशा भक्तों की महिमा का महिमा को बढ़ाना चाहते हैं।
This is that transcendental transcendental competition between the Lord and the devotee.
This is the transcendental competition between the Lord and the devotee.
तो भगवान ने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे।
भगवान ने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे।
एक प्रश्न यह था कि हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए।
एक प्रश्न था कि हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए।
महाप्रभु ने पूछा।
महाप्रभु ने पूछा
तो हमें भगवान की लीलाओं का।
महाप्रभु ने पूछा प्रश्न तो रामानंद रॉय ने कहा कि हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए।
भगवान की अनेक लीलाएं हैं।
भगवान की अनेक लीलाएं हैं।
सबसे प्रसिद्ध कौन सी है?
सबसे प्रसिद्ध कौन सी है?
आप चुन सकते हैं कोई भी। कोई कहेगा मक्खन चोर, कोई कहेगा शुरू का बात करना,
कोई कहेगा मक्खन चोर, कोई कह रहा है जो सूर्पनखा का वध करना।
वहाँ के लीला होगा, फिर चिंतन करो वहाँ के आज अभिग्रह का।
फिर चिंतन कीजिए आप वहाँ के अर्च विग्रह का।
इसको आपके मंदिर में आप बड़े कपड़े में आज अभिग्रह देखते
हैं। इसको आपके मंदिर में आप देखेंगे बहुत सुंदर अर्च विग्रह
हैं। ये सब इस मंदिर में राधा माधव जी की मूर्ति है।
यहाँ पे बहुत सुंदर राधा माधव के अर्च विग्रह हैं।
तो भक्त है वो कहता है हियर इज गॉड।
जो भक्त है वो कहता है यहाँ भगवान है।
ये मायावादी कहते हैं ये तो मार्बल की मूर्ति है।
और मायावादी लोग कहते हैं ये मार्बल की मूर्तियाँ हैं।
वो कहते हैं देखो ये मूर्ख वैष्णव को भोजन अर्पण करते हैं भगवान को, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं प्रसाद हो गया।
मायावादी लोग कहते हैं देखो ये मूर्खों को ये भोजन अर्पण करते हैं भगवान को और थोड़ी देर बाद कहते हैं प्रसाद बन गया।
प्लेट तो वैसे की वैसी भरी हुई है।
प्लेट तो वैसे की वैसी पड़ी रहती है।
वो ये नहीं जानते कि भगवान अपने नेत्रों से और कानों से खाते।
वो ये नहीं जानते कि भगवान अपने नेत्रों और कानों से भी खा सकते हैं।
नेत्रों से देखते हैं, कानों से भक्ति के भक्ति प्रार्थना का उच्चारण सुनते हैं।
नेत्रों से वो देखते हैं और कानों से भक्ति प्रार्थना का उच्चारण सुनते हैं।
फिर उस प्रसाद में भगवान की धूप मिल जाती है।
और इस प्रकार उस प्रसाद में भगवान की धूप मिल जाती है।
तो कम्बुली के व्यक्ति अर्च विग्रह में विश्वास नहीं करते।
इसलिए कम बुद्धि के व्यक्ति अर्च विग्रह की विश्वास नहीं करते।
एक भाई व्यक्ति मुझे मिलने आया था, मैंने उसे कई बार कहा कि वो भगवान का दर्शन करें।
एक बार एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया था, मैंने उसको कई बार कहा कि चलिए भगवान का दर्शन करने के लिए।
उन्होंने कहा मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता।
उन्होंने अंत में कहा कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता।
तो भारत में भी कई कई काफ़ी बड़ी प्रजा है क्योंकि भगवान के आचर विग्रह में श्रद्धा नहीं करते।
भारत में भी कई व्यक्ति हैं जो अर्च विग्रह की पूजा में विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं रखते।
फिर भगवान के उपदेश का भगवद गीता में भगवान ने क्या क्या बताया है?
भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं?
ऐसे भगवान अप्रकट हुए अत्यंत दुखी है,
जब भगवान अप्रकट हुए तो उनके सनातन साथी अर्जुन बड़े दुखी थे।
जब भगवान अप्रकट हुए तो उनके अर्जुन के सनातन साथी बहुत अर्जुन बहुत दुखी थे।
अर्जुन ने उन लीलाओं का वर्णन किया जो कि असंभव थे, पर भगवान के सहयोग के कारण सबको प्राप्त।
अर्जुन ने उन लीलाओं का प्रकट उन वो लीलाएं प्रकट हुई जो बिना उनके संभव नहीं थी, बिना भगवान के संभव नहीं थी।
अर्जुन ने भगवान के गीता के श्लोकों का स्मरण शुरू किया।
फिर अर्जुन ने भगवान के भगवद्गीता के श्लोकों का उच्चारण शुरू किया।
और जैसा ही उन्होंने इन श्लोकों का उच्चारण किया, उन्हें क्या महसूस हुआ कि भगवान स्वयं उपस्थित हैं।
और जैसे ही उन्होंने भगवद्गीता के श्लोकों का उच्चारण किया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भगवान साक्षात वहाँ पर विद्यमान है।
भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर है?
भगवान के नामों और भगवान में कोई अंतर नहीं है।
भगवान की लीला में कोई अंतर नहीं?
भगवान की लीलाओं में भी कोई अंतर नहीं।
भगवान के उपदेश में कोई अंतर नहीं?
भगवान के उपदेश में भी कोई अंतर नहीं।
तो इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए भगवान की लीलाओं का, रूप का, गुणों का, हम क्या स्मरण करें।
इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए भगवान की लीलाओं का, गुणों का, उनकी शिक्षाओं का स्मरण करने के।
और प्रयास करोगे,
प्रयास करोगे,
प्रयास करोगे तो भगवान बुद्धि देंगे।
अगर आप प्रयास करेंगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे।
इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड हेल्प दो दो हेल्प
देम। इंग्लिश में कहते हैं गॉड हेल्प दो दो हेल्प देम।
तो यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है आगे कि ये जो संत हैं जिन्होंने मन इंद्रियों को वश में किया है, वो कहाँ उन्होंने मुक्ति का मार्ग स्वीकार किया है।
यहाँ बताया जा रहा है भागवत में कि जिन संतों ने मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ है बताया है।
तो आगे कह रहे हैं ये कैसे मुक्ति के मार्ग में कैसे पहुंच सकते हैं।
आगे बताया कि हम आगे मुक्ति के मार्ग में कैसे पहुंच सकते हैं।
साधु संघ के द्वारा।
साधु संघ के द्वारा
ये साधु संघ का लाभ उठाओ।
इसलिए आप सब साधु संघ का लाभ उठाइए।
तो साधु की संगत कैसे प्राप्त होती है?
साधु की संगत कैसे प्राप्त होती है?
भक्त साधु,
भक्त साधु,
ग्रंथ साधु
और ग्रंथ साधु,
वो इसके द्वारा आपको आपका वैधानिक जीवन आरंभ हो सकता है।
इसके द्वारा आपका आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो सकता है।
जैसे ग्रंथ के वितरण की सेवा,
जैसे ग्रंथ वितरणों की सेवा,
ये भी महत्वपूर्ण है। ये एक ग्रंथ ग्रंथ भक्त का प्रभाव,
इसलिए ये इतनी महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ भक्त का
और जो नहीं जुड़ते वो दुर्भाग्यशाली,
जो नहीं जुड़ते सेवा में वो दुर्भाग्यशाली
है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं क्योंकि भौतिक इतनी तृप्ति के प्रति आकर्षित हैं, वो संतों का संगत का लाभ नहीं उठा सकते।
यहाँ बताया जा रहा है कि जो भौतिकवादी लोग हैं वो संतों का लाभ नहीं उठा पाते भौतिक इच्छाओं के कारण,
उनकी संगत का लाभ नहीं उठा
पाते, उनकी संगत का लाभ नहीं उठा पाते।
तात्पर्य हमें पापा जी कोई महत्वपूर्ण पॉइंट की है रचना करें।
तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण बात को बता रहे हैं।
सबसे पहले तो कहते हैं जैसे भारत ने भोग जो भौतिक जीवन है क्लेशों का उसका उसकी चर्चा की है और ये शिक्षा दी है कि इस प्रकार आप ऐसी स्थिति से निकल सकते हो।
इसमें भौतिक क्लेशों की चर्चा की गई है और हम किस प्रकार हम भौतिक क्लेशों से बाहर निकल सकते हैं उसकी चर्चा की गई
है। पापा जी कहते हैं ओनली वे आउट ऑफ इट इज एसोसिएशन विद द बॉडी एंड एसोसिएशन विद द ईगो। तो प्रभुपाद कहते हैं एक ही उपाय है साधु संगत और उसके द्वारा आध्यात्मिक मार्ग सरल हो जाता
है। और एक ही उपाय है कि साधुओं का संग करना चाहिए जिसके द्वारा हमारा आध्यात्मिक मार्ग आध्यात्मिक मार्ग
हो जाता है। समय आप ये कथा पढ़ते हो निगारी की,
जैसे आप कथा पढ़ते हैं निगारी की,
एक शिकारी था मृगारी,
एक शिकारी था उनका नाम मृगारी था,
सब उसे डरते थे,
सब उसे डरते थे।
और वो उसका पेशा क्या था,
उसका पेशा क्या था,
खानदानी पेशा था शिकार करना,
खानदानी पेशा था शिकार करना,
और जानवरों को घायल करता था पहले, फिर जब वो मर जाते थे जब उनको बेचता था,
जानवरों को घायल करता था और जब वो मर जाते थे तो उनको बेचता
था, ये था आमदन का साधन, ये था उनका
आमदन का, ये था उनका कमाई का साधन, दिस वॉज द वे ऑफ अर्निंग।
हाँ, इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे।
तो नारद मुनि गुजर के गुजर के जा रहे थे,
नारद मुनि गुजर के जा रहे थे वहां से,
उन्होंने देखा नहीं घायल पशु,
उन्होंने देखा इतने सारे अनेक घायल पशु,
पूछा कौन है इसका कारण,
कौन है इसका कारण,
मैं कहा ये वो छुप गया था खड़े उनके पीछे, उसे देखा संतों को आते हुए, मैं हूँ इसका कारण मृगाय,
मृगारी झाड़ियों के पीछे छुप गया था, जब वो सामने आए नारद मुनि तो वो सामने आके बोला कि मैं इसका कारण
हूँ, नारद मुनि ने कहा तुम जानते हो इसका क्या परिणाम होगा,
तुम जानते हो इसका क्या परिणाम होगा,
नहीं जिन्हें पशु का मारेगा वो बदला लेंगे,
जितने भी पशु को आप मार रहे हैं वो आप बदला लेंगे,
आप इनको घायल क्यों कर दिया पहले,
आप क्यों क्यों
क्यों उनको तरफ से देखते हो और फिर उनको मार देते हो,
क्यों आप उनको तड़पते हुए देखते हो और फिर बाद में मार देते हो,
उन्होंने कहा मुझे बड़ा आनंद आता है,
आनंद आता है,
फिर नारद मुनि ने कहा, तो नारद मुनि का ऐसा प्रभाव हुआ शिकारी ने कहा ठीक है मैं डालना छोड़ दूंगा,
नारद जी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मृगारी ने कहा कि ठीक है मैं इसको छोड़ दूंगा,
पर उसने पूछा ये मेरा रोटी का कहा मेरी आमदन इस कार्य से होती है, तो मैंने कार्य बंद करूँगा तो मैं जीऊँगा कैसे,
उन्होंने नारद मुनि से पूछा मृगारी ने कि ये तो मेरा आमदनी का स्रोत है, अगर इसे मैं बंद कर दूंगा तो मैं कैसे जीऊँगा कैसे,
तो घबराओ मत,
नारद मुनि ने कहा आप घबराइए मत,
भगवान देखभाल करेंगे,
भगवान आपको
देखभाल
करेंगे,
दूर दूर तक सूचा फैल गई, मृगारी भयंकर मृगारी संत बन गया,
दूर दूर तक सूचना फैल गई कि मृगारी संत बन गया,
दूर दूर से लोग आने लगे उनका दर्शन लेने के,
दूर दूर से लोग आने लगे उनका दर्शन करने के लिए,
और मेरे बाद हर धर्म में आप किसी संत को मिलने जाओ कोई भेंट लेकर जाओ साथ,
तो ये रिवाज है हर धर्म में कि जब आप किसी संत से मिलने जाएं तो उनको कुछ भेंट दें,
तो अनेक लोग आए थे और मृगारी का वो कुछ ना कुछ लाते थे, फल ले आए फूल ले आए,
अनेक लोग मृगारी से मिलने आते थे और कुछ ना कुछ उनको भेंट लेके आते थे, फल फूल,
और फिर मृगारी संतुष्ट था,
और फिर मृगारी संतुष्ट हो गया,
तो फिर अगली बार नारद मुनि ने कहा चलो देखें ये शिकारी कैसा है,
अगली बार
ये शिकारी कैसा है, नारद मुनि
ने बताया कि शिकारी कैसे हैं,
माने नारद मुनि अंगिरा मुनि उस स्थान से गुजर रहे थे, नारद मुनि ने कहा हमें एक सुशी है उसको देख,
नारद मुनि और अंगिरा मुनि उस स्थान से एक बार गुजर रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मेरा एक शिष्य है,
तो उन्होंने देखा जब ये शिष्य आ रहा था उनको प्रणाम करने के लिए, वो चलने से पहले पैर को पृथ्वी पर रखने से पहले देखा था कोई जीवात्मा तो नहीं है,
तो मृगारी जब नारद मुनि को प्रणाम करने के लिए आ रहे थे तब वो ध्यानपूर्वक चल रहे थे कि उनके पैरों में कोई चींटी ना आए,
तो ये था परिवर्तन,
ये था परिवर्तन।
तो साधु संघ के द्वारा पापी से पापी व्यक्ति कभी उद्धार आरम्भ हो सकता है।
तो साधु संघ के द्वारा पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है।
इसलिए हमें सदा प्रयास करना चाहिए। यदि महाप्रभु ने कहा क्या है धर्म था एक हो,
इसलिए हमें सब प्रयास करना चाहिए। जैसे महाप्रभु ने कहा है जारे देखो तारे को कृष्ण
उपदेश। आगे प्रभाता में कह रहे हैं जो भाग्यशाली व्यक्ति जो कि अभी नहीं रहते वो दुर्भाग्यशाली।
इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं जो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो वो भक्ति का
तो पप्पा जी कह रहे हैं नेवर्थलेस दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इंसिस्ट दैट एवरीवन टेक टू द पाथ ऑफ एडॉप्टिंग चैरिटेबल हरे कृष्ण। पप्पा जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को ये निर्णय करना चाहिए कि हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र का।
प्रभुपाद जी इसमें परपट में बता रहे हैं कि हम सब हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ना।
आगे प्रभुपाद कहते हैं ध्यान से सुनिए the preachers of Krishna consciousness go from door to door to inform people how they can be relieved from the miserable condition of material life. So what you can say is that the Hare Krishna Bhavana Sangha Bhavana go home to home. Because लोगों को ये सूचना देने के लिए कि कैसे तुम इस क्लेश जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते।
हाँ, तो हमारे इस्कॉन के भक्त घर घर जाते हैं और उनको प्रचार करते हैं कैसे आप इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं।
पापा देखा ये हमारे भक्त घर घर जाते हैं लोगों को मुक्त करने के लिए।
प्रभुपाद ने कहा है कि हमारे भक्त घर घर जाते हैं लोगों को भौतिक क्लेशों से मुक्ति दिलाने के लिए।
आयो कहते चेतन महाप्रभु का गुरु कृष्ण प्रदे कृपा गुरु और भगवान की कृपा से व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुरु और भगवान की कृपा से व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है।
अगर किसी में थोड़ी भी बुद्धि हो वो समझ सकता है कि हाँ क्लेश क्लेश है और ये है उपाय इस भयंकर स्थिति से मुक्त होने के लिए।
यहाँ पे बताया जा रहा है जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो समझ सकता है कि इस भौतिक जगह से निकलने के लिए यही एक उपाय है।
दुखालयम अशाश्वतम,
दुखालयम अशाश्वतम,
वहाँ क्या कहते हैं दो लक्षण है इस भौतिक जीवन के।
भगवान क्या कहते हैं दो लक्षण है इस भौतिक जीवन के, दुखी दुख और हर चीज अस्थाई टेंपरेरी।
हम चाहते नहीं कि रिश्ता टूटे कभी,
हम नहीं चाहते कि रिश्ता टूटे कभी,
टूटता ही है। हमें चाहते हम रोगी पीड़े बने हमको होना ही पड़ता है।
हम चाहते हैं कि हम रोगी बने पीड़ित बने ना, हम नहीं चाहते।
तो इस अध्याय में बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये जो जीवात्मा है एक जंगल में जाता है, जंगल में एक प्रकार का प्यार होता है और धन कमाने के लिए दुनिया की दूसरी तरफ चले जाएगा क्योंकि जो भौतिक जगत है उसकी तुलना की गई है एक वन के साथ। तो इस अध्याय में हम देखते हो कैसे कहा जाएंगे गया बहुत वाली व्यक्ति बंदर जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है काम वाले स्थान के लिए, वो किस प्रकार वो इस भयंकर स्थिति से मुक्त हो सकते हैं।
इस अध्याय में कहा गया है कि
एक व्यक्ति बंदर की तरह
एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वो भौतिक जगत में फंस जाता है काम वासना के कारण।
उपाय दिया गया है कैसे आप स्थिति से बच सकते हो,
इसलिए उपाय दिया गया है कि इस प्रकार आप स्थिति से बाहर निकल सकते हैं।
जान के श्लोक में कहा गया है कि जो संत है, जाने वाली है, वो सबका मित्र है।
बताया गया है कि आध्यात्मिक व्यक्ति सबका मित्र है
और वो शांत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन और इंद्रियों को वश में किया।
और वो शांत है क्यों? क्योंकि उन्होंने मन और इंद्रियों को अपने वश में किया।
और ज्ञान उन्हें कैसे प्राप्त होता है? साधु संघ के लोग।
और उनको ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? साधु के साधु के
संग। ये प्रसिद्ध श्लोक साधु संघ साधु संघ सर्वशास्त्र का, इसलिए
जो प्रसिद्ध श्लोक है साधु संघ सर्वशास्त्र का।
मात्र साधु संघ सर्व
साधु
संघ सर्व मात्र का अर्थ है एक सेकेंड का चौदवा हिस्सा है। एक सेकेंड का चौदवा हिस्सा, एक सेकेंड के चौदह हिस्से के अगर आपको संघ मिले तो जीवन सदस्य,
एक सेकेंड के चौदवें हिस्से में अगर आपको साधु संघ मिले तो उसका आपको लाभ प्राप्त होगा।
पापा जी कहीं मिले एक दो मिनट के लिए मैं भक्ति की भावना का ज्ञान दिया।
प्रभुपाद बहुत लोगों को एक दो मिनट के लिए भी मिले और उनको भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ, साधु संघ का
लाभ हुआ। प्रभुपाद जी रशिया में गए थे, उन्हें कम्युनिस्ट था सोवियत यूनियन।
प्रभुपाद जब रशिया में गए थे उस टाइम कम्युनिस्ट सरकार थी वहाँ पर।
चार दिन की यात्रा थी
सर।
नहीं,
पाँच दिन।
और प्रभुपाद जी ने उन पाँच दिन में एक रशियन भक्त बनाया।
और प्रभुपाद ने पाँच दिनों में एक रशियन भक्त बना दिया।
उनको दीक्षा भी दे दी।
उनको दीक्षा भी दे दी।
सिखाया धोबी पुरसा कैसे करना,
उनको सिखाया कि कैसे धोबी पुरसा करना,
वैदिक शास्त्रों का सार दिया।
और फिर वैदिक शास्त्रों का सार दिया
और कहा तुम प्रचार करो।
और कहा कि तुम प्रचार करो।
उन्हें प्रचार करके हजारों लोगों को आकर्षित किया।
और उन्होंने प्रचार करे हजारों जीवों को आकर्षित किया भक्ति में।
तो ये साधु संघ का प्रभाव,
यही साधु संघ का प्रभाव है।
ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा, ध्रुव मेरी प्रशंसा के लिए तुमने इतनी तपस्या उठाई है।
ध्रुव महाराज को कहा कि ध्रुव तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए इतनी तपस्या उठाई है,
मांगो मुझसे क्या वर चाहिए।
भगवान पूछे मांगो मुझसे क्या वर चाहिए।
ध्रुव ने कहा अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि मुझे उत्तम भक्तों की संगत मिले।
तो आप मुझे अगर कुछ देना चाहते हैं तो तुम्हारे ने कहा कि मुझे उत्तम भक्तों की संगत दीजिए।
उत्तम भक्तों की संगत लोगे तो फिर आपकी जाने उत्साह आपका बढ़ेगा।
हाँ, उत्तम भक्तों का संगत लेंगे तो आपका आध्यात्मिक उत्साह बढ़ेगा।
जब बराबर के भक्तों को मिलो तो मित्रता का भाव प्रकट करो।
बराबर के भक्तों को अगर मिले तो आप मित्रता का भाव रखिए।
अगर आप कम बुद्धि के व्यक्तियों को मिले जिनका आपसे कम आध्यात्मिक ज्ञान है हमें कंपैशन दया की भावना प्रकट करनी।
अगर आप कम आप भक्तों से मिले जो आपसे छोटे हैं भक्ति में कम हैं तो आप उनको कंपैशन का भाव रखिए।
तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि तात्पर्य में बाबा जी कह रहे हैं कि कैसे भक्तों को घर घर जाना चाहिए भगवान के संदेश लेकर।
इस तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्तों को कैसे घर घर जाना चाहिए भगवान का संदेश देने के लिए।
तो अब मैराथन में कई भक्त घर घर जाते हैं।
मैराथन में जिस प्रकार भक्त लोग घर घर जाते हैं
तो ये घर घर जाना क्रिश्चियन लोग भी करते हैं।
घर घर जाना क्रिश्चियन लोग भी करते
हैं। क्रिश्चियन लोग भी
पंजाब में प्रचार कैसे किया घर घर जाके,
जैसे क्रिश्चियनों ने प्रचार किया घर घर जाके।
तो हम प्रचार करते हैं तो ये चिंता नहीं करते आदर आदर में प्राप्त होगा या बेचते।
तो भक्त लोग ये चिंता नहीं करते कि हम प्रचार करते जाएंगे तो आदर प्राप्त होगा या बेचती प्राप्त होगी, इसकी चिंता नहीं करते भक्त लोग।
तो हमें इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए अगर हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं।
हमें इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं।
भगवत हमें प्रसन्न करने का कहा गया है न सप्रेश अवदेश नित्य भगवत सेवया भगवती तुम श्लोक है भक्ति भैवती रह सके। अगर हम श्रीमद भगवत को रोज पढ़े तो उसे क्या लाभ होगा? जो बौद्धिक आकर्षण है वो नष्ट होगा। जैसे चेत परमा वहाँ के नाम को उठाने का पहला लाभ क्या है, आपका काला कोला कोले जैसा हृदय साफ होता है।
भागवतम में पहले श्लोक में बताया गया है कि अगर आप भागवतम का लाभ उठाएंगे तो आपका चेतो दर्पण माध्यम होगा।
और गृहस्थ में हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है।
शास्त्र में हर प्रश्न का उत्तर है
और
हर समस्या का हल है।
हमें छोटी आयु से ये आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव करना चाहिए,
इसलिए हमें छोटी आयु से ही इस आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव करना चाहिए।
हाँ, प्रयास करोगे तो भगवान संतुष्ट से हो देखोगे।
अगर आप प्रयास करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे, आपको सफलता देंगे।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
प्रश्न है
किसी का? कोई प्रश्न?
महाराज थैंक यू फॉर द क्लास। एक प्रश्न है कि आप बता रहे कि हमें प्रजल्पा समझना है, तो ये डिटरमिनेशन कैसा है कि जो प्रजल्पा है व्यर्थ की बातें इन सब बचने को
कैसे पता लगेगी ये प्रजल्पा है?
प्रजल्पा से कैसे बचे, डिटरमिनेशन कैसे बनाए?
नहीं, प्रजल्पा से कैसे बचे
ये प्रश्न,
ये निर्णय करके जो प्रतिकूल कार्य है वो मैंने नहीं ध्याना। प्रजल्पा है टॉक नॉट रिलेटेड टू कृष्ण। जैसे आप क्रिकेट क्रिकेट मैच हो रहा है, ये हो रहा है, आप फिल्मों के बारे में बात करना है, तो प्रजल्पा कृष्ण का नाम नहीं तो मतलब ये नहीं भगवान की लीलाओं की चर्चा करना, ये भी कि भगवान के संदेश को कैसे आप फैला सकते हैं, ये कृष्ण कथा है। और अगर आप जब खड़े हो रेगुलरली किताबों को पढ़ लें तेरी बनो उड़े प्रजल पर, हम सब जानते हैं उड़े प्रजल पर।
मुझे
फुल टाइम ज्वाइन करना है तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि करना है नहीं करना है, तो वो चीज़ कैसे राय है? मेरी इच्छा ज्वाइन करनी है कि बहुत कन्फ्यूजन सब बनाए कि ये डिफिकल्ट की जाते हैं, तो कैसे उनको? ये साधारण पर से व्यक्ति की हम से नौकरी करें सेवा करें, हम कहते हैं हमारे फॉर्चुनर यहाँ उनकी सेवा में मौका मिल रहा है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। और भगवान के भक्तों की सेना नहीं होगी, भगवान का प्रचार कौन करेगा? अभी सरकार तो नहीं करेगी प्रचार।
मेरा प्रश्न ये था, जैसे इसके तात्पर्य में बताया कि कुछ जो लोग होते हैं जिनका भाग्य अच्छा नहीं होता, वो साधु की पूर्ण रूप से शरण नहीं ले पाते हैं, तो वैसे देखते हैं हमारे लिए, जैसे कि मैं भी कभी कभी भक्तों की बात मान लेते हैं, कभी कभी नहीं मानते हैं, कुछ बातें अच्छी लगती है कुछ नहीं, तो मतलब गुरु को या साधु को पूर्ण रूप से कैसे सरेंडर कर सकते हैं?
आप अगर सरेंडर करना चाहते हो सुरेंद्र, हम ये नहीं कहते तुम घर बार छोड़ो, धंधा छोड़ो और मंदिर में आ जाओ। हम कहते हैं कि आप जहाँ भी हो, किस आश्रम में भी हो, भगवान को केंद्र में धर्म बनाओ।
थैंक यू महाराज जी। महाराज जी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ना मोस्टली जो हमारे खुद के भक्त है कई बार वो सब बिजी होते हैं,
क्या
बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भक्त बिजी होते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं अपनी अपनी सेवाओं में बिजी होते हैं, एंड उस टाइम मैं कहता हूँ कि कम ऑन गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन,
तो कोई अवेलेबल नहीं होता, तो एट दैट टाइम अकेले जाना रिकमेंडेड होता है या यू शुड सिट एंड चैंट द नाम?
मंदिर के भक्तों को निमंत्रण देते हो साथ चलने के लिए, आप चाहते हो कि मंदिर के भक्त आपके साथ जाएं और वो व्यस्त रहते हैं, तो आप जब प्रेफरेंस पास कर सकते हो किसी का शेड्यूल एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता तो अकेले जाए हो।
महाराज जी, जैसे एवरी डे वी हेयर कि हमें स्पिरिचुअल मास्टर को प्लीज करना चाहिए, विदाउट प्लीजिंग द स्पिरिचुअल मास्टर इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज कृष्णा, वी सेड दैट वी शुड मेक एवरी एफर्ट टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर, बट इवन दो फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस,
what is the indication that spiritual master is getting pleased? If you're doing what he says, what he has told you, then he's pleased. Don't think that he doesn't know that. Krishna in the heart gives direction to the spiritual master. So if you're doing what he says, he doesn't say anything in practical. So, and he is pleased. You don't have to collect $1 million of Dakshina. You just follow the instructions. Like Prabhupada was always meditating. How can I go abroad? How can I take Bhaktisiddhanta's message to the Western country? People are so sad and attached. Who can say Krishna is one of the day? Or I'm sending a day home, and it will make his job easy. जैसे कि चैतन्य चैतन्य में कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मुश्किल कार्य सरल बन जाता है, उनकी कृपा के बिना सरल कार्य मुश्किल हो जाता है। और ये कहा गया है कि लंगड़े व्यक्ति हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चल सकते हैं, मेरे व्यक्ति सुन सकते हैं, वो लंगड़े व्यक्ति पहाड़ों के पार भी जा सकते हैं। तो निर्णय क्या है, वो चैतन्य महाप्रभु की शरणागत होना चाहिए। शरणागत होने का अर्थ क्या है, उनकी शिक्षा का पालन।
अच्छा बोल रहे थे कि हमें साधक के बारे में बात करते हैं, ग्रंथ साधु कहकर जाके में वितरण करना चाहिए, श्री प्रभुपाद ने बोला है। तो आप बता रहे थे कि पंजाब में कैसे क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, घर घर जाके वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी बहुत लिमिटेड स्ट्रेंथ है, यहाँ पर बहुत लिमिटेड स्ट्रेंथ है घर घर जाने के लिए, बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्रिश्चियनिटी। तो हम क्या कर सकते हैं ताकि हम तेजी से एक्सपेंड कर सकते हैं, घर घर भगवद गीता को पहुंचा सकते हैं? क्या हमें ऑनलाइन मोड का सहारा लेना चाहिए या फिर कैसे हम क्या अपना कर
सकते हैं? हमें प्रयास करना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बस सच है, जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए।
हरे कृष्ण महाराज जी, मैंने प्रणाम। महाराज जी, जैसा आप बता रहे थे कि जो साधु होते हैं वो सबको सबका मित्र होता है, वो सबको अपनी मित्र दृष्टि से देखता है, तो मतलब ये भाव हम कैसे ला सकते हैं कि सबको समान भाव से देखें? जैसे भक्ति में भी देखते हैं कि कई जो भक्त होते हैं उनसे हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है, पर कईयों से उतना अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाता, तो सबको समान कैसे हम मित्रता के भाव से देख सकें?
ट्राई करो सबको आदर दो, और जैसे आज के श्लोक में कहा गया है जो साधु है वो सबका सब चिंतक, सबका लाभ देखा जाता है, वो है साधु, जो सबका मित्र है, किसी को शत्रु नहीं मानता। प्रयास करने से संभव कार्य भी संभव हो जाता है।
हरे कृष्ण महाराज, हम लोग ग्रुप में जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, ऑफिस स्टेशन जाते हैं, तो उसमें कुछ नए भक्त भी होते हैं और कुछ सीनियर भक्त भी होते हैं। तो अभी दो तीन दिन पहले की बात है, हम नैना देवी गए हुए थे,
वहाँ पे कुछ जो एसएचओ इंस्पेक्टर थे तो उन्होंने हमारे भक्तों को वितरण करने से रोका, तो जो हमारे कुछ नए भक्त थे वो डिमोडलाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद में उनका डिस्ट्रीब्यूशन में मन नहीं लगा, तो हम उनके साथ में ऐसा क्या करें कि जो उनका वितरण में मतलब उनका डिमोडलाइज
रोका,
इंस्पेक्टर ने वहाँ पे हमें वितरण करने से रोका, फिर हम गए उनसे बात किया नेक्स्ट डे, तो फिर उन्होंने कह दिया लेकिन हमारे भक्त जो डिमोडलाइज हो गए उन्होंने वहाँ पे वितरण करने का उनकी इच्छा नहीं हुई, तो उनका उत्साह बना रहे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
उन्हें कहना चाहिए कि ये तो बड़े जगह में संभव है, जैसे कल में कहना था तुमने जिले ने आया प्रचार कर रहे थे घर में जाकर कहीं ने उन्हें जासूस बुलाया, उन्होंने बेची की चोरी हो विस्तृत हो गए वो नए भक्त हो गए, क्योंकि जो सीजन जो बोली है उसको पता कि अर्चन में लोग किसान में बुक डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ नहीं है, किसी धर्म को भी जो भी हमारे भक्त चाहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे।
अंतिम प्रश्न
ऑन दिस साइड,
इस साइड में किसी इस तरह से अंतिम प्रश्न पूछना चाहते हैं, खुद भी खड़े हुए हैं जो पहले खड़ा होगा उसके पास में
ओके ओके।
हरे कृष्णा प्रभु जी महाराज, महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण हैं उनको उनके 16 माला करने के बाद उनके रूप ध्यान करने की जरूरत है,
माला कहते हैं तो ध्यान करना आवश्यक, उनके रूप के ऊपर ध्यान करना आवश्यक है,
तुम्हारे रे हो तो सुनो ध्यान से हम हो जाए कृष्ण लीला का स्मरण करना वो आवश्यक नहीं है,
कृष्ण लीला का स्मरण करना आवश्यक
आप केवल प्रेम रखो प्रेम भगवान के प्रति, वो प्रेम प्यार करना फिर कोई करने के लिए
मेरा क्वेश्चन ये था महाराज जी, अब आपने बताया साधु संघ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो ये तो पता सही क्या गलत है, पर एक्चुअल में होता गलती है,
गलती होती है फिर पश्चाताप होता है, कैसे
मुझे ये ज्ञान दीजिए इसके द्वारा जो पाप की इच्छा है जैसे साफ हो गए, वो उन्होंने कहा कि उदाहरण दिया एक हाथी तालाब में स्नान करता है तो अपने शरीर साफ हो जाता है, फिर वो बाहर निकलते ही मिट्टी में बैठता है तो फिर गंदा हो जाता है, तो वो कह रहे थे उन्हें ऐसी शिक्षा दो जो पाप की इच्छा है वो निकल जाए, तो प्रयास करना चाहिए कि हम उस ज्ञान को अपनाएं जिसके द्वारा आप जब मिले के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं।
हरि बोल, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा कृष्णा।